आनिया का नाश्ता उसके कमरे में आ गया था। अनामिका जी अपने महल की व्यवस्था देखने में व्यस्त थीं और अन्वय अपने काम में लगा हुआ था। आनिया ने नाश्ता किया, फिर जुली के साथ नीचे उद्यान में चली गई। वे अभी वहां पहुंची ही थीं कि मोहिनी वहां आ गई। आनिया आने के बाद दूसरी बार उससे मिल रही थी। अपने स्वभाव के अनुसार वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, पर मोहिनी तो उससे नफरत करती थी। वो गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपने भोले चेहरे के जाल में तुम अन्वय या माँ को फंसा सकती हो, पर मैं तुम्हारे जाल में कभी नहीं फंसूंगी। बहुत शातिर लड़की हो तुम, चेहरे से जितनी मासूम लगती हो उससे कहीं गुना ज्यादा चालबाज हो। शायद सब इंसान ऐसे ही होते होंगे, मौका मिला नहीं कि उसका फायदा उठाने चले आते हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। सच में बहुत जानती हो तुम मेरे बारे में, बहुत दिलचस्पी लगती है तुम्हें मुझ में, नहीं तभी मुझे इतना नोटिस भी करती हो और यहाँ मुझसे बात करने भी चली आई। उसकी बात काटते हुए आनिया भी उसके साथ उसी के लहजे में बात करने लगी। वहीं जुली दोनों को हैरानी से देखने लगी। आनिया की बात सुनकर मोहिनी ने भड़कते हुए कहा, न मुझे तुम्हारे इस चेहरे में कोई दिलचस्पी है, न ही तुमसे बात करने का कोई शौक है। मैं यहाँ बस तुम्हें आगाह करने आई हूँ कि अन्वय से दूर रहो। तुम जो जबरदस्ती उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही हो ना, सब नजर आ रहा है मुझे। और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अन्वय पर सिर्फ मेरा हक है, वो सिर्फ मेरा है। इसलिए अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से और अन्वय से दूर। तो तुम मुझे धमकाने आई हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे यहाँ अन्वय लाया है और जब तक वो मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और अन्वय तुम्हारा कब से हो गया? अगर वो तुम्हारा है तो मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? अगर इतना ही विश्वास है तुम्हें कि वो तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा, तो मेरे होने से तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे कुछ छिनने का डर हो तुम्हें? सच तो ये है कि अन्वय तुम्हारा कभी था ही नहीं और ना ही अब उस पर तुम्हारा कोई हक है। इसलिए ना तो मैं यहाँ से कहीं जाऊँगी, ना ही उसकी ज़िंदगी में कभी मेरे अलावा कोई दूसरी आएगी। आनिया ने शांत भाव से अपनी बात कही। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने गरजते हुए कहा, भूलो मत कि तुम एक मामूली इंसान हो और वो एक वैम्पायर, तुम्हारा उससे कोई मेल ही नहीं। अगर मेल नहीं होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती और तुम एक मामूली सी इंसान के यहाँ आ जाने से यूं तड़प नहीं रही होती। बात बस इतनी सी है कि भले ही मैं एक आम मामूली लड़की हूँ, पर अन्वय की नज़रों में मेरी अहमियत तुम जैसे हजारों वैम्पायरों से भी कहीं ज़्यादा है। तुम भी ये बात जानती हो कि अन्वय के लिए मैं क्या मायने रखती हूँ। तुम्हें डर है कि कहीं वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर ले और तुम बस देखती ना रह जाओ, इसलिए तुम यहाँ मुझे डराने और धमकाने आई हो। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लड़की एक वैम्पायर से दिल आ सकती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख सकती है, वो इतनी कमजोर नहीं कि किसी ऐरे गैरे की गीदड़ भक्खियों से डरकर अपने कदम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटा ले। अन्वय इस मामूली लड़की को चाहता है, इसलिए मैं अब मामूली नहीं रही। ना तो मैं खुद यहां से कहीं जाऊंगी और ना ही किसी तीसरे को अपने और अपने प्यार के बीच आने दूंगी। आनिया ने एक बार फिर बेहद शांति और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात उसके सामने रख दी, जिसे सुनकर मोहिनी ने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका खून पीने के लिए आगे बढ़ी, जुली उनके बीच में आते हुए बोली, मिस मोहिनी, मिस आनिया हमारी अतिथि हैं। अगर आपने उनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझे मास्टर अन्वय को इस बारे में बताना पड़ेगा। अन्वय का जिक्र होते ही मोहिनी गुस्से का घूंट पीकर रुक गई। वो जानती थी कि अगर अन्वय को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आनिया उसके लिए महत्व तो रखती थी, वो भी बहुत ज्यादा। तभी उसकी सुरक्षा के लिए उसको यहाँ ले आया था वो, इसलिए अब उसको आनिया से दूर हटना पड़ा। वो दो कदम पीछे हो गई, फिर आनिया को गुस्से से घूरते हुए बोली, अगर तुम अन्वय से दूर नहीं रही तो मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने से पीछे नहीं रहूंगी और अन्वय भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, ये याद रखना तुम। मैं अन्वय को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आनिया ने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। उसकी मुस्कान से मोहिनी और चिढ़ गई और गुस्से से महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई। आनिया अब घास पर पैर फैलाकर बैठ गई और खाली आंखों से आकाश को देखने लगी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। जुली कुछ देर गंभीरता से उसे देखती रही, फिर उसके पास बैठते हुए बोली, मिस आनिया, आप उनकी बातों से परेशान न हो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके और अन्वय के बीच में कैसा रिश्ता है, इतना तो मैं जानती हूँ कि अन्वय को उससे प्यार नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसकी जिंदगी में मैं कभी नहीं होती। आनिया ने उसकी तरफ निगाहें घुमाते हुए गंभीरता से सवाल किया तो जुली ने उसे बताना शुरू किया, मास्टर अन्वय यहाँ नहीं रहते थे, उनका बचपन और आज तक की जिंदगी इंसानों के बीच गुजरी है। मैंने सुना है मास्टर के जन्म के बाद से ही वो यहाँ से दूर हो गए थे। मल्लिका तब अकेली थी, तभी मिस मोहिनी उनकी जिंदगी में आई, मल्लिका ने ही उन्हें पाला है। इस बार से पहले एक बार और मास्टर अन्वय यहाँ आए थे, तब हमारे कुटुंब पर छिपकर हमला किया जा रहा था, इसलिए मास्टर अन्वय आए थे। कुछ दिन यहीं रुके थे और सब ठीक होने के बाद वापस चले गए थे। तब पहली बार मिस मोहिनी ने उन्हें देखा था और उसे एक मुलाकात में उन्हें उनसे प्रेम हो गया। पर मास्टर अनवे ने उनमें जरा भी रुचि नहीं दिखाई। उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं। पर मिस मोहिनी को विश्वास था कि मल्लिका मास्टर अनवे के लिए उन्हें ही चुनेंगी। पर फिर आप आ गईं और मल्लिका का आपके प्रति लगाव देखकर मिस मोहिनी का विश्वास टूट गया। मास्टर अनवे, जिन्होंने ना कभी उन्हें देखा ना ही बात की, वो आपकी इतनी परवाह करते हैं, ये उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो आपको धमकाने आ गईं। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके पास हूँ वो आपको कुछ नहीं कर सकेंगी। मास्टर अनवे आपसे प्रेम करते हैं, ये हम सबने महसूस किया है, क्योंकि आपके अलावा कभी किसी के प्रति इतने नर्म नहीं पड़े। ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो मुझे बाकी लड़कियों से अलग ट्रीट करता है, और तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ से अब कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि अनवे सिर्फ मेरा है और उसकी जिंदगी में शामिल होने का हक बस मेरा है। वैसे तुम्हारे मास्टर जी हैं कहाँ? सुबह से दिखे ही नहीं, किसी कार्य में व्यस्त होंगे। मुझे तो आपके साथ रहने को कहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। जैसे ही जूली ने अपनी बात खत्म की, आन्या की नज़र सामने पड़ी। जैक और जीवन वहां से गुजर रहे थे, तभी आन्या ने उन्हें आवाज़ दी और पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, अरे चंगू मंगो की जोड़ी, रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। आन्या के मुंह से निकले शब्द सुनकर जूली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वहीं जीवन और जैक दोनों के कदम रुक गए। उन्होंने आन्या को अजीब नजरों से देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे, पर आन्या की तरफ नहीं बढ़े। तो आन्या ने फिर से कहा, अरे मैं तुम दोनों को ही बुला रही हूँ, इधर आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीवन और जैक दोनों की आंखें गहरी हो गईं। इससे पहले किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी। जैक जानता था कि आन्या का स्वभाव ही ऐसा है, तो वो थोड़ा शांत हो गया। और जीवन जानता था कि आन्या अनवे के लिए क्या है, मतलब वो इस साम्राज्य की होने वाली मल्लिका है, इसलिए वो भी शांत बना रहा। दोनों अब आन्या के पास चले आए। आन्या उठकर खड़ी हो गई, फिर दोनों को देखकर क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली,
सॉरी, वो मुझे तुम दोनों के नाम नहीं पता थे, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा, है ना? दोनों ने उसे देखा और बिना किसी भाव के नामे सर हिला दिया, तो उन दोनों को देखकर दोबारा कहा, वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? जैक, जीवन, दोनों ने अपना अपना नाम बता दिया। आन्या ने दोनों के चेहरे देखे, वो एक जैसे ही दिखते थे। ये देखकर उसने सोचते हुए अगला सवाल किया, तुम दोनों जुड़वा हो? हाँ, दोनों ने एक साथ गंभीरता से जवाब दिया। आन्या देख रही थी, दोनों बिल्कुल अनवय की तरह गंभीर मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं। ये देखकर अब उसने शिकायती लहजे में कहा, यार तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? एक तुम्हारे मास्टर हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं, और तुम सब भी उनके तरह ही रहते हो, इतना गंभीर क्यों रहते हो? क्या तुम्हारी बीवी को कोई और उठा ले क्या है, या किसी ने तुम्हारी जमीन जायदाद छीन ली है जो हर वक्त इतने गुस्से में रहते हो? हम ऐसे ही हैं, आप बताइए क्या काम था आपको हमसे? एक बार फिर दोनों ने साथ में सवाल किया। पहले तो आन्या दोनों को आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगी, पर उनकी गहरी काली घूरती आंखें देखकर वो खुद डर गई और मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप दोनों को मेरा बोलना नहीं पसंद, तो आगे से मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। अभी बस इतना बता दीजिए कि मास्टर अनवय इस वक्त कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मास्टर अनवय अभी हमारे सीमा की सुरक्षा का जायज़ा लेने गए हैं, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, आपको उनके लौटने तक का इंतज़ार करना होगा, जीवन ने गंभीरता से जवाब दिया और दोनों वहां से चले गए। मोहिनी की बातों से आन्या का मूड कुछ खराब हो गया, तो वो अब अपने कमरे में चली गई और अनवय के इंतज़ार में उपन्यास पढ़ने लगी। जूली उसके कक्ष के बाहर ही रहती थी। आन्या ने भोजन भी बेमन से किया और अनवय की वापसी का इंतज़ार करती रही, पर अनवय देर रात को लौटा। तब तक आन्या उसका इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। अनवय लौटते ही उसके कमरे में आया और उसे अच्छे से ढकते हुए और खिड़की बंद करने के बाद अपने कक्ष में चला गया। अगले कुछ दिन अनवय अपने कार्यों में व्यस्त रहा। कुछ दिन तक तो वो सुबह सुबह चला जाता और देर रात को लौटता। ना आन्या सुबह के वक्त उससे मिल पाती, ना ही रात को। उसके बाद उसने आना ही बंद कर दिया। आन्या उसके बिना नहीं रह पा रही थी, उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। अनवय के बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अनामिका जी से भी कुछ देर ही बात करती, जूली से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अकेले बैठे बैठे उपन्यास पढ़ती रहती। मोहिनी उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, पर आन्या के कक्ष में वो जा नहीं पाती, और बाहर रहने पर वो या तो अनामिका जी के साथ होती या फिर जूली उसके साथ होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। आन्या बस जूली और अनामिका जी से ही बात करती थी। जैक और जीवन से उसने दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की थी, उनका रवैया उसके प्रति रूखा था, जो आन्या को पसंद नहीं आया था। वो जल्दी से अपने कक्ष से बाहर भी नहीं जाती थी अब, क्योंकि जब बाहर निकली तो बहुतों की अजीब सी निगाहों को खुद पर टिका पाती। तब एहसास होता कि क्यों अनवय उसे अकेले कहीं भी जाने से मना करता था। वो उनकी निगाहों से घबरा जाती, पर अनवय नहीं था वहां जिससे वो महफूज महसूस कर सके। याद बहुत करती थी उसे, पर वो मिलता ही नहीं था। रात के एक बज रहे थे, उसकी तीनों उपन्यास खत्म हो गई थी। आखिरी उपन्यास उसने अभी अभी खत्म की थी और आज उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। रात को जूली शिकार पर जाया करती थी और आन्या अपने कक्ष में रहती थी, जहां उसे कोई खतरा नहीं था। पर आज वो बाहर जा रही थी और अनवय के आदेश के मुताबिक आज भी उसके खास वैम्पायर साथी आन्या के कमरे की सुरक्षा कर रहे थे, जिससे खुद आन्या भी अनजान थी। आनिया ने बाहर निकलकर देखा तो सारे महल में अंधेरा छाया हुआ था। बस जगह जगह लगे लैंप और झूमरों से आती हल्की रोशनी थी वहां, जिसके वजह से चीजों को देखा जा सकता था। आनिया को अनवे के कमरे का रास्ता याद था तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई, इस बात से अनजान कि वो अकेली नहीं है। एक साया उसके पीछे चला आ रहा था।